व्याकरणिक कोटियां। भाषा का उद्देश्य भाव या विचार की अभिव्यक्ति है, और क्योंकि पूर्ण अभिव्यक्ति वाक्य से ही संभव है, इसलिए भाषा विज्ञान में वाक्य को भी भाषा की इकाई माना जाता है। किंतु एक उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि वाक्य भी अभिव्यक्ति का पूर्ण माध्यम नहीं है। उदाहरणार्थ यह वाक्य लीजिए, लड़का किताब पढ़ता है। क्या इस वाक्य से वक्तव्य पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है? इस वाक्य से संबंध ऐसे कई प्रश्न हैं जिनका ज्ञान से इनसे नहीं होता। जैसे लड़का कहने से यह पता नहीं चलता कि लड़का कैसा है, लंबा या नाटा, गोरा या सांवला, तेज या मंद, सुंदर या असुंदर, धनी या गरीब, लेटा है या बैठा, उसकी उम्र क्या है, कहाँ का रहने वाला है। इसी तरह किताब को लेकर भी उलझन है। किताब किस भाषा की है, किस लिपि की है, किस विषय की है, बड़ी या छोटी, नई या पुरानी, सजिल्द या अजिल्द, कठिन या सरल, सरस या नीरस और पढ़ता है की भी स्थिति कोई बहुत स्पष्ट नहीं है। कहाँ पढ़ता है, कब पढ़ता है, आज पढ़ता है या रोज रोज, मन में पढ़ता है या जोर से पढ़ता है, पढ़ने की गति धीमी है या तेज, ऐसे और भी अनेक प्रश्न हैं जो इस वाक्य के संबंध में उठाए जा सकते हैं, जिनका समाधान इस वाक्य से ही होता है। ये प्रश्न निरर्थक हैं, यह कहना भी उचित नहीं, क्योंकि जब हमने वाक्य के लक्षण में अभिव्यक्ति की पूर्णता को महत्व दिया तो अभिव्यक्ति की पूर्णता तभी मानी जाएगी जब कोई वाक्य सुनने पर उसके संबंध में सारी जिज्ञासाएँ निवृत्त हो जाएँ। पर किसी भी वाक्य से सारी जिज्ञासाओं की निवृत्ति नहीं होती। हम स्थूल रूप से थोड़ा बहुत अर्थ समझ लेते हैं और उसी से संतोष कर लेते हैं। व्याकरणिक कोटियों का उद्देश्य भाषा में अभिव्यंजना संबंधी सूक्ष्मता और निश्चयात्मकता लाना है। इसी के लिए विभिन्न उपाय काम में लाए जाते हैं, जैसे लिंग, वचन, पुरुष, कारक, क्रिया, काल आदि। व्याकरणिक कोटियों के संबंध में निम्नलिखित बातें ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, प्रत्येक भाषा के शब्दों और रचना पद्धतियों में अंतर है, अतः व्याकरणिक कोटियों का एक ढांचा सभी के लिए लागू नहीं हो सकता। जिस तरह एक व्यक्ति की पोशाक दूसरे के देह में बिल्कुल ठीक नहीं उतरती, उसी तरह एक भाषा की कोटियां भी दूसरी भाषा में सर्वथा घटित नहीं हो सकती। कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि किसी की पोशाक किसी दूसरे पर बिल्कुल ठीक बैठ जाती है। वैसा तो भिन्न भाषाओं में भी संभव है, पर वह नियम नहीं, अपवाद होगा। ऊपर ही हमने देखा है कि अंग्रेजी के ढांचे में हिंदी को कस दिया गया है और सभी कोई उसे इत्मीनान से ढो रहे हैं। लातिन का ही ढांचा विगत 3 शताब्दियों से अंग्रेजी में ढोया जा रहा है, पर वैज्ञानिक दृष्टि से वह वांछनीय नहीं है। ढोने को तो गुलामी का ही बोझ ढोया जाता है, पर इससे गुलामी को आज तक किसी ने वांछनीय नहीं कहा। संस्कृत की व्याकरणिक कोटियाँ चीनी पर घटित नहीं हो सकती और न अरबी की अंग्रेजी पर। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक भाषा के व्याकरणिक कोटियों का निर्धारण उसी भाषा के आधार पर किया जा सकता है। दूसरा, व्याकरणिक कोटियाँ काल सापेक्ष हैं। एक ही भाषा के विकास में व्याकरणिक कोटियाँ परिवर्तित हो जाया करती हैं। उदाहरणार्थ संस्कृत से प्राकृत और अपभ्रंश का विकास हुआ, पर संस्कृत में जहाँ 3 लिंग और 3 वचन हैं, वहाँ प्राकृत और अपभ्रंश में 2। इसी प्रकार संस्कृत की काल धारणा से हिंदी आदि आधुनिक आर्य भाषाओं की काल धारणा भिन्न है। संस्कृत की क्रियाओं में काल यानी टेंस से अधिक वृत्ति यानी मूड का प्राधान्य है। हिंदी में वृत्ति की धारणा सर्वथा तिरोहित हो गई है। तीसरा, व्याकरणिक कोटियों का निर्माण एवं वर्गीकरण भाषिक गठन के आधार पर होता है। व्याकरण पहले कोटियों का निर्माण कर उन्हें भाषा में नहीं ढूंढता, बल्कि भाषा प्रवाह का विश्लेषण कर कोटियों का निर्माण करता है। व्याकरणिक कोटियों की शास्त्रीय उपयोगिता तो है ही, रचनात्मक और व्यवहारिक उपयोगिता भी कम नहीं है। शास्त्रीय उपयोगिता यह है कि उनके आधार पर भाषा का विवेचन और विश्लेषण संभव होता है, और व्यवहारिक उपयोगिता यह है कि नए शब्द गढ़ने से उनसे सहायता मिलती है। शब्द सदा नए गढ़े जाते हैं, पर तत्व तो उनके पुराने होते हैं। साथ ही गढ़ने की पद्धति भी भाषा के स्वीकृत परंपरा के अनुकूल होनी चाहिए, अन्यथा जो शब्द गढ़े जाएंगे वे भाषा के कलेवर में पच नहीं सकेंगे। वैसे शब्दों से अनावश्यक अर्थ भेद तो होता ही है, भ्रम भी होता है। हिंदी में पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण के प्रसंग में अनेक बार ऐसे नए शब्द सामने आ जाते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि हिंदी की प्रकृति का ध्यान नहीं रखा गया है, जैसे आवक इनवर्ड के लिए, जावक आउटवर्ड के लिए। ये शब्द न तो सुनने में भले लगते हैं न व्याकरण सम्मत है। जैसा पहले कहा गया है, प्रत्येक भाषा की प्रकृति भिन्न होती है। मनुष्यों के समान भाषाओं का भी स्वतंत्र अस्तित्व एवं व्यक्तित्व होता है, इसलिए उनकी कुटियाँ भी भिन्न और स्वतंत्र होती हैं। फिर भी कुछ ऐसी सामान्य कुटियाँ हैं जो प्रायः बहुत सारी भाषाओं में पाई जाती हैं। वे हैं लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, वाच, वृत्ति। पहला, लिंग। लिंग शब्द का अर्थ है चिन्ह, अर्थात जिससे किसी चीज को पहचाना जाए। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राकृतिक या लौकिक और दूसरा व्याकरणिक। प्राकृतिक लिंग के उदाहरण है स्त्री पुरुष, माता पिता, लड़का लड़की, बैल गाय आदि। इनमें पहले शब्द पुरुषवाचक हैं और दूसरे स्त्रीवाचक। किंतु व्याकरणिक लिंग सदा प्राकृतिक लिंग का अनुसरण नहीं करता। व्याकरणिक लिंग के उदाहरण के रूप में निम्नलिखित शब्दों को ले सकते हैं, ग्रंथ पुस्तक, कान नाक, पेट पीठ। अर्थ की दृष्टि से ग्रंथ और पुस्तक में कोई अंतर नहीं है, फिर भी एक पुल्लिंग है दूसरा स्त्रीलिंग। इसी तरह कान पुल्लिंग है नाक स्त्रीलिंग, पेट पुल्लिंग है पीठ स्त्रीलिंग, यही व्याकरणिक लिंग है। व्याकरण में कभी कभी प्राकृतिक लिंग का उल्लंघन भी पाया जाता है। प्राकृतिक लिंग की दृष्टि से पत्नीवाचक शब्दों को सदा स्त्रीलिंग होना चाहिए, किंतु संस्कृत में पत्नी के पर्यायों में दार पुल्लिंग, भार्य स्त्रीलिंग और कलत्र नपुंसक लिंग है। दार शब्द का प्रयोग पुल्लिंग और बहुवचन में ही होता है। यदि प्राकृतिक लिंग का नियंत्रण अनुलंग होता तो इन तीनों शब्दों को स्त्रीलिंग ही होना चाहिए था, किंतु भाषा की शुद्धता की दृष्टि व्याकरणिक लिंग को ही महत्व देती है, प्राकृतिक लिंग को नहीं। लिंग संबंधी यह अनियमितता अन्य भाषाओं में भी विद्यमान है। उदाहरणार्थ रूसी में सूर्य का पर्याय सोंत्से नपुंसक लिंग और चंद्रमा का पर्याय लूना स्त्रीलिंग। संस्कृत या हिंदी में सूर्य और चंद्रमा के वाचक सभी शब्द पुल्लिंग ही होते हैं। व्याकरणिक लिंग का कोई तर्कसंगत आधार नहीं दिखता। यदि प्राकृतिक लिंग के आधार पर व्याकरणिक लिंग की कल्पना हुई तो सभी भाषाओं में लिंग का एक ही रूप होना चाहिए, पर ऐसा नहीं पाया जाता। किसी भाषा की लिंग व्यवस्था स्त्री पुरुष को आधार बनाकर चली है तो किसी भाषा की सचेतन अचेतन को और किसी भाषा के श्रेष्ठ हीन को। दूसरी बात यह कि प्राकृतिक लिंग के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग की कल्पना तो संगत है, पर नपुंसक लिंग की कल्पना क्यों करूँ? यदि कहें कि निर्जीव वस्तुओं के लिए नपुंसक की कल्पना की गई तो यह भी प्रत्यक्ष विरोध है, क्योंकि जिन भाषाओं में नपुंसक लिंग है उनमें भी इनका प्रयोग केवल निर्जीव वस्तुओं के लिए नहीं होता। संस्कृत में ही सखावाचक मित्र शब्द नपुंसक लिंग है, पर मित्र या तो पुरुष हो सकता है या स्त्री। रूसी में भी सूर्यवाचक सोंत्से शब्द नपुंसक हुआ, पर चंद्रवाचक लूना स्त्रीलिंग हो गया। दूसरी कठिनाई यह भी है कि सभी भाषाओं में लिंग की संख्या एक नहीं है। कुछ भाषाओं में जैसे हिंदी या अंग्रेजी में दो ही लिंग हैं। संस्कृत, ग्रीक, जर्मन, रूसी, मराठी, गुजराती आदि में तीन लिंग हैं और काकेशी परिवार की चेचीन भाषा में संज्ञा के 6 लिंग पाए जाते हैं। यह लिंग भेद इस बात को प्रमाणित करता है कि लिंग संबंधी धारणा का कोई तर्कसंगत आधार नहीं। कुछ मानव वैज्ञानिकों ने लिंग धारणा का मूल ढूंढने का प्रयास किया है, किंतु उनके निष्कर्ष संतोषप्रद और मान्य नहीं हो सके। फ्रेजर नामक मानव वैज्ञानिक की मान्यता है कि आरंभ में महिलाओं द्वारा प्रयुक्त भाषा के आधार पर लिंग की कल्पना की गई होगी। कुछ लोगों ने भौतिक जगत में दृश्यमान सबला निर्बला, सजीवता निर्जीवता, श्रेष्ठताहीनता, उदात्तता निष्कृष्टता आदि को लिंग धारण का आधार माना है। पर यह स्मरण रखना चाहिए कि किसी वस्तु के प्रति प्रत्येक समाज की या एक ही समाज की विभिन्न कालों में एक ही धारणा नहीं होती। धारणा तो देश और काल के अनुसार बदलती रहती है। ऐसी स्थिति में किस आधार पर लिंग धारणा का आरंभ हुआ यह कहना आज संभव नहीं है। आरंभ में चाहे जिस कारण से लिंग धारणा उत्पन्न हुई हो, बाद में बहुत कुछ पद निर्माण की प्रक्रिया के से नियंत्रित हो गई, क्योंकि लिंग का निर्धारण प्रत्यय से होने लगा। हिंदी के पा प्रत्यांत शब्द बुढ़ापा, मोटापा आदि पुल्लिंग बन गए तो ता प्रत्यांत स्त्रीलिंग, सुंदरता, मधुरता आदि। भाषा वैज्ञानिक दृष्टि से ही नहीं, व्यावहारिक दृष्टि से भी लिंग की एक ही उपयोगिता दिखती है और वह है व्याकरणिक अन्विति। पुल्लिंग शब्दों की अनुवृत्ति पुल्लिंग शब्दों से होती है और स्त्रीलिंग शब्दों की स्त्रीलिंग शब्दों से, जैसा लड़का जाता है लड़की जाती है। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम भी इस बात से सूचक हैं कि लिंग निर्धारणा पर व्याकरण का ही शासन है। यदि लिंग प्राकृतिक दृष्टि से निश्चित और अपरिवर्तनीय होता तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने की आवश्यकता ही क्या थी। प्रकृति पर व्याकरण का शासन नहीं चलता। संस्कृत में पुल्लिंग शब्दों में आ और ई जोड़कर स्त्रीलिंग बनाया जाता है तो हिंदी में आ ई इन नी आनी आइन या आदि जोड़कर। कहीं कहीं इन प्रत्ययों से काम नहीं चलता तो नर और मादा शब्द जोड़कर भी लिंग का निर्देश किया जाता है। ऐसा प्रायः वैसी वस्तुओं के वाचक शब्दों के साथ होता है जिनका प्राकृतिक लिंग जानना संभव नहीं है, जैसे पशु पक्षी या कीट पतंग। लोमड़ी चाहे नर हो या मादा, स्त्रीलिंग वही प्रयुक्त होती है। कोयल स्त्रीलिंग है तो कौआ पुल्लिंग। इनमें नर भी होते हैं और मादा भी, पर इनके लिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग वाचक पृथक शब्द नहीं है, जैसा घोड़ा घोड़ी बकरा बकरी आदि शब्दों में पाया जाता है। अंग्रेजी में भी ऐसे शब्दों के लिए पुल्लिंग में ही और अंग्रेजी में शी का प्रयोग करना पड़ता है, जैसे ही गोट शी गोट, मैन सर्वेंट मेड सर्वेंट, वाशरमैन वाशरवुमन आदि। अनेकत्र पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के वाचक शब्द बिल्कुल बदल जाते हैं, जैसे पिता माता भाई बहन आदि। निष्कर्ष यह कि भाषा विज्ञान की दृष्टि से लिंग की कोटि शुद्ध भाषिक विशेषता है, जिसका न तो प्राकृतिक लिंग से निश्चित संबंध है और न जिसके आरंभ का असंदिग्ध आधार ज्ञात है। यूं जिन भाषाओं में लिंग व्यवस्था है उनमें यह विशेषता वक्ता के मस्तिष्क में इतनी बद्धमूल है कि कोई भी शब्द लिंग के बिना सामने प्रस्तुत ही नहीं, प्रयोग करते समय उसका लिंग सहचरित ही प्रयोग होता है। दूसरा, वचन। लिंग की तुलना में वचन अधिक वास्तविक भी हैं और व्यवहारिक भी। लिंग का कोई निश्चित और तर्कसंगत आधार नहीं है, किंतु वचन का आधार सांख्य भेद है, जो तार्किक और व्यवहारिक दोनों ही दृष्टियों से स्वीकार्य है। सांख्य भेद अनंत प्रकार का और विविध दृष्टियों से हो सकता है, पर व्याकरण में उसके दो ही भेद प्रचलित हैं और वे हैं एक और अनेक के भेद से एक वचन और बहुवचन। कुछ भाषाओं में दो के लिए द्विवचन की व्यवस्था की गई, जैसे संस्कृत में द्विवचन था, लुथवानी में आज भी द्विवचन है। द्विवचन के समान कुछ भाषाओं में त्रिवचन को भी व्यवहारिक मानना कठिन है। यदि एक एक संख्या के आधार पर एक एक वचन की कल्पना करें तो संख्याओं के समान वचन भी अनंत हो जाएंगे और व्याकरणिक दृष्टि से उनकी उपयोगिता संदिग्ध रहेगी, क्योंकि व्याकरण गणित नहीं है। व्याकरणिक कोटियों की उपयोगिता केवल व्यवहारिक है और व्यवहारिक दृष्टि से एक के लिए एक वचन और एक से अधिक के लिए बहुवचन की कल्पना सर्वथा उपादेय है। आरंभ में एक ही वचन ही रहा होगा, कुछ भाषाओं के बहुवचन बनाने की पद्धति से इन कल्पनाओं का समर्थन होता है, क्योंकि एक वचन में ही कुछ न कुछ जोड़कर बहुवचन बनाया जाता है। संस्कृत हिंदी अंग्रेजी आदि भाषाओं में यह पद्धति प्रचलित है। एक वचन के प्रयोग से जब लोगों को बहुत्व की अभिव्यंजना में कठिनाई हुई होगी तो उसी में कुछ जोड़कर बहुत्व व्यक्त किया गया होगा। बाद में उसकी उपादेयता सिद्ध हो जाने पर वह भाषा का अनिवार्य अंग मान लिया गया। यदि एक से अधिक के लिए बहुवचन हो सकता है तो उसमें द्विवचन की गतार्थ हो जाता है। यही कारण है कि संस्कृत से विकसित होने वाली भाषाओं में द्विवचन को अनावश्यक समझकर छोड़ दिया गया। द्विवचन की कल्पना के पीछे युग्मों में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं का आधार रहा होगा, ऐसा माना जाता है। आँख कान होठ हाथ पैर आदि युग्म में ही हमेशा सामने आते हैं। प्राकृतिक वस्तुओं में भी अनेक ऐसी हैं जो युग्मता की भावना उत्पन्न करते हैं, जैसे सूर्य चंद्र दिन रात प्रातः सायं आदि। इन्हीं से द्वित्व की धारणा को और उसे द्विवचन को बल मिला होगा। बहुत्व की धारणा दो प्रकार से चलती है, पहला व्यक्ति के अनुसार और दूसरा समूह के अनुसार। व्यक्तिनिष्ठ बहुत्व में तो बहुवचन मान लिया जाता है, किंतु समूहवाचक बहुत्व प्रायः एक वचन के द्वारा व्यक्त होता है। कारण इसका यह कि वहां व्यक्ति की अनेकता मानकर भी समूह के रूप में उसकी एकता ही मानी जाती है। समूहवाचक एकत्व संभवतः गिनती की दुविधा से भी प्रेरित रहा होगा। जोड़ा गंडा गाही दर्जन कोड़ी ग्रोस आदि इसके उदाहरण हैं। अशिक्षित लोगों के बीच 20 को भी एक इकाई मानकर गिनती चलती है, जैसे 1 20 2 20 3 20 5 4 20 6 20 आदि। व्यक्ति की अनेकता में भी जाति की एकता को सामने रखकर बहुवचन एक वचन का प्रयोग होता है। संस्कृत का एक नियम है, जातौ एक वचनम। मनुष्य विवेकशील प्राणी है, कुत्ता स्वामी भक्त होता है। इन वाक्यों में मनुष्य और कुत्ता एक वचन में प्रयुक्त हुए हैं, पर न तो मनुष्य का अर्थ एक मनुष्य है और न कुत्ता का अर्थ एक कुत्ता। वस्तुतः ये सभी मनुष्यों और कुत्तों के वाचक हैं, फिर भी एक वचन का प्रयोग मनुष्य मात्र या कुत्ता मात्र को एक इकाई के रूप में ले लेने के कारण है। लिंग के समान वचन में भी हमेशा तार्किक दृष्टि नहीं रहती, अर्थात किसी की दृष्टि से जहाँ बहुवचन होना चाहिए वहाँ भी एक वचन पाया जाता है, और जहाँ एक वचन होना चाहिए वहाँ बहुवचन चलता है। उदाहरणार्थ संस्कृत में 20 के ऊपर के संख्यावाची शब्द एक वचन में ही मिलते हैं, जैसे विंशत्यद्या सदयुक्त्वे। इसलिए विंशति नरा शतम बालिका में नर और बालिका में बहुत रहने पर ही विंशति और शत शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त हुए। एक विषमता और देखी जाती है, एक दो तीन चार। एक तो संस्कृत में संख्यावाची शब्द विशेषण के रूप में तीनों लिंगों में प्रयुक्त होते हैं, जैसे त्रय बालका, तिस्त्र बालिका, त्रिणी फलानि, किंतु यह बात चार के ऊपर के संख्यावाचकों में समाप्त हो जाती है, जैसे पंच बालका, पंच बालिका, पंच फलानि। इस भेद का कोई भी तर्कसंगत आधार नहीं है। रूसी में भी यह विशेषता पाई जाती है। इसी प्रकार पत्नीवाचक दार शब्द एक का वाचक होकर भी बहुवचन ही होता है। एक पत्नी को भी कहना होगा तो दारा ही कहेंगे। दर्शन और प्राण शब्द भी बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं। आपके दर्शन हुए, मैं कृतार्थ हुआ, उनके प्राण निकल गए। तात्पर्य कि लिंग की अपेक्षा वचन अधिकतर संगत आधार पर स्थित हैं, किंतु उसमें भी असंगतियां नहीं हैं, ऐसी बात नहीं। द्विवचन या त्रिवचन की कल्पना, एक के लिए बहुवचन का प्रयोग, बहु के लिए एक वचन का प्रयोग, ये सब वचन संबंधी असंगतियां नहीं तो और क्या है। व्याकरणिक कोटियों वचन की कोटि ऐसी व्यापक है जिसका संबंध संज्ञा सर्वनाम क्रिया सबसे है। कुछ श्लिष्ट योगात्मक भाषाओं में उसका संबंध विशेषण से भी है, जैसे संस्कृत के एक वचन में सुंदर बालक, द्विवचन में सुंदरो बालको और बहुवचन में सुंदरा बालका होता है। तीसरा पुरुष। पुरुष की कल्पना वक्ता श्रोता और उनसे भिन्न के आधार पर हुई। वक्ता उत्तम पुरुष, श्रोता मध्यम पुरुष, वक्ता श्रोता से भिन्न प्रथम यानी अन्य पुरुष। पुरुष और वचन का संबंध बहुत घनिष्ठ है। पुरुष का प्रमुख क्षेत्र क्रिया है, गौण रूप से उसका प्रयोग सर्वनामों के लिए भी होता है। सर्वनाम के भेदों में पुरुषवाचक सर्वनाम अलग ही माने गए हैं। पुरुष के एक वचन रूप अपवर्जी और बहुवचन समावेशी होते हैं, जैसे मैं चला। इस वाक्य में वक्ता के अतिरिक्त और किसी का बोध नहीं होता, किंतु हम चले वक्ता श्रोता के अतिरिक्त वहाँ उपस्थित और लोगों भी समावेश हो जाते हैं। तू चले या वह चले से निर्दिष्ट व्यक्ति के अतिरिक्त और किसी का ग्रहण नहीं होता, किंतु तुम चलो और वे चले से श्रोता के अतिरिक्त और का भी ग्रहण होता है। इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि पुरुष का एक वचन अपवर्जी होता है, बहुवचन समावेशी। चौथा कारक। कारक शब्द क्री धातु से निष्पन्न है जिसका अर्थ है करने वाला। व्याकरण में क्रिया का निष्पादक कारक कहलाता है। क्रिया की निष्पत्ति के लिए साधन भेद अपेक्षित होता है, साधन भेद से ही कारक भेद हो जाता है। अन्य व्याकरणिक कोटियों के समान ही कारण संबंधी धारणा भी एक रूप नहीं है। कारणों की संख्या 2 से लेकर 23 तक पाई जाती है। अंग्रेजी में केवल 2 कारक हैं, जो जार्जी में 23। अन्य भाषाओं की कारण संख्या इन्हीं 2 सीमाओं के बीच है। उदाहरणार्थ लातिन और जर्मन में 5, प्राचीन स्लाविक में 6, संस्कृत ग्रीक लिथुआनी में 7, हिंदी में 8 कारक हैं। संस्कृत में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण और संबोधन, ये 7 कारक माने गए हैं। संबंध को कारक नहीं माना गया क्योंकि क्रिया की निष्पत्ति में उसका योग नहीं रहता। जैसे भारत का सैनिक लड़ना जानता है, इसमें जानना क्रिया का अन्वय सैनिक से हो रहा है, भारत से नहीं। क्रिया निष्पत्ति या क्रिया अन्विति में उसका हाथ न रहने से ही संबंध को कारक नहीं माना गया, किंतु इस दृष्टि से संप्रदान और अपादान को भी कारक मानने में कठिनाई होती है, क्योंकि क्रिया निष्पत्ति में न संप्रदान का हाथ होता है और न उपादान का। किसी भी क्रिया के लिए चार वस्तुएं सर्वथा अपेक्षित हैं। पहला क्रिया का करने वाला, दूसरा जिस पर क्रिया के व्यापार का फल पड़े, तीसरा जिसकी सहायता से क्रिया की जाए, और चौथा वह स्थान जहाँ क्रिया हो। जैसे लड़का छुरी से कमरे में फल काटता है। पहला काटने के लिए किसी का होना जरूरी है, यहाँ लड़का है। दूसरा काटना तभी संभव है जब कोई वस्तु योग्य हो, यहाँ फल है। और तीसरा काटने के लिए कोई साधन जरूरी है, यहाँ छुरी है। और चौथा काटना किसी स्थान पर ही संभव है, यहाँ कमरा। अब फल किसके लिए काटा जा रहा है, किसके बगीचे से लाया गया है आदि प्रश्न काटना क्रिया की निष्पत्ति के लिए अनुपयोगी। इनका संबंध परोक्ष और दूरारूढ़ है, इसलिए कारक के सीमा में कर्ता, कर्म, करण और अधिकरण ये चार ही माने जाए होने चाहिए। इसका एक और आधार कि ये चारों शब्द एक ही क्री अर्थात करना धातु से निष्पन्न है। संप्रदान का अर्थ है जिसको दिया जाए, अपादान का अर्थ है जहाँ से हटाया जाए। इन दोनों में दान, संप्रदान और आदान, अपादान का भाव है करने का नहीं। पंडित रामाज्ञा पांडे की मानता है कि पाड़ने के पूर्व संप्रदान अपादान का कारकत्व था ही नहीं। कारकों में लगने वाले चिन्हों को विभक्ति कहते हैं क्योंकि उनसे एक कारण दूसरे से विभक्त हो जाता है। कर्ता से कर्म का, कर्म से करण का, करण से संप्रदान का पार्थक विभक्तियों की सहायता से ही सूचित होता है, अन्यथा प्रतिपदिक के रूप में सर्वत्र एक ही शब्द रहता है। कारक के साथ लिंग और वचन की धारणा लगी रहती है। कारक का संबंध शब्द रूपों से है और शब्द रूपों में लिंग एवं वचन दोनों का अनुसरण करना पड़ता है। क्रिया, क्रिया को लेकर अनेक कोटियां हो गई। अनेक कोटियों के समान क्रिया की कोटियां भी सभी भाषाओं में एक जैसी नहीं है। भारत यूरोपीय परिवार की भाषाओं में मुख्यतः निम्नलिखित कोटियां पाई गई। क, कर्म के अभाव और उद्भव के स्वभाव, कर्म के अभाव और सद्भाव के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। ख, संस्कृत में फल का भोक्ता कौन है, इसके आधार पर दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं, आत्मनेपद और परस्मैपद। फल का भोक्ता यदि कोई स्वयं हो तो वहाँ आत्मनेपद का प्रयोग होता है, और यदि फल का भोक्ता कोई दूसरा हो तो परस्मैपद का प्रयोग होता था। बाद में चलकर आत्मनेपद और परस्मैपद का भेद संस्कृत में भी सिमट गया। दोनों के लिए दोनों पद का प्रयोग होने लगा और प्राकृत अभ्रंश काल तक आते आते तो यह भेद सर्वथा लुप्त हो गया। ग, वाच, क्रिया में कर्ता की प्रधानता, कर्म की प्रधानता और भाव की प्रधानता के आधार पर कर्तृवाच, कर्मवाच एवं भाववाच की कल्पना की गई। कर्तृवाच, राम पुस्तक पढ़ता है। कर्मवाच, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। भाववाच, राम से पढ़ा नहीं जाता। अकर्मक से ही भाववाच होता है, यह कहना ठीक नहीं है। उपयुक्त उदाहरण, राम से पढ़ा नहीं जाता में पढ़ना क्रिया सकर्मक है, फिर भी यह वाक्य भाववाच का ही है। कर्तृवाक्य में इसे गतार्थ नहीं कर सकते, कर्म न होने से यह कर्मवाच है ही नहीं, फिर इसे भाववाच मानने के अतिरिक्त क्या गति है। संस्कृत तीनों वाच्यों के लिए विभिन्न रूप थे, क्यों रचना की दृष्टि से कर्मवाच और भाववाच में अंतर नहीं था। मया पुस्तकम दीयते कर्मवाच और मया शीयते भाववाच में दीयते शीयते क्रियापदों के रूप की दृष्टि से कोई अंतर नहीं है। हिंदी में वाच तो संस्कृत के ही है, पर कर्मवाच और भाववाच की रचना जाना क्रिया की सहायता से निष्पन्न होती है। कर्म, कर्तृवाच और कर्मवाच का भेद सदा स्पष्ट नहीं पाया जाता। कुछ लोगों की धारणा है कि प्रत्येक कर्तृवाच को कर्मवाच या भाववाच बनाया जा सकता है। आरंभ में व्याकरण पढ़ाते समय वाच्य परिवर्तन का महीनों अभ्यास कराया जाता है, किंतु वाच्य परिवर्तन वाक्य स्थित शब्दों का केवल यांत्रिक परिवर्तन नहीं है, उससे अर्थ भी परिवर्तित हो जाता है। वाच्य परिवर्तन के संबंध में इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। कर्तृवाच या कर्मवाच एक दूसरे के परिवर्तित रूप मात्र नहीं है। उदाहरणार्थ, वह भात पकाता है, कर्तृवाच, उससे भात पकाया जाता है, कर्मवाच। इन दोनों वाक्यों में वाच्य परिवर्तन से अर्थ में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ, किंतु निम्नलिखित वाक्यों में वाच्य परिवर्तन से अर्थ में पर्याप्त अंतर हो जाता है। वह राम को पीटता है, कर्तृवाच, इसके द्वारा राम पीटा जाता है, कर्मवाच। प्रथम वाक्य में बल पीटने की क्रिया पर है और द्वितीय वाक्य में पीटने वाले व्यक्ति अर्थात राम पर। इस प्रकार वाच्य परिवर्तन से कर्ता एवं कर्म के बल में अंतर आ जाता है। काल, क्रिया में काल का संबंध इससे होता है कि निष्पत्ति कब हो रही है। तीन काल सर्वविदित हैं, भूत, वर्तमान और भविष्य। सभी भाषाओं की काल धारणा एक जैसी नहीं है। अनेक भाषाओं में काल की धारणा से अधिक प्रमुख प्रकार की धारणा है। संस्कृत में या आज भी रूसी में क्रिया के काल भेद का आधार उसका प्रकार है। हिंदी या अंग्रेजी की सूक्ष्म काल भेद की धारणा के अभ्यस्त व्यक्ति संस्कृत या रूसी की प्रकार धारणा को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते और इन भाषाओं का प्रयोग करते समय उन्हें हमेशा उलझन होती है, क्योंकि काल के जैसे प्रयोग का उन्हें अभ्यास है वह चीज़ इन भाषाओं में नहीं मिलती। रूसी में भूत या भविष्य दोनों कालों के दो ही भेद हैं, पूर्ण और अपूर्ण। इसी तरह संस्कृत में भूतकाल के तीन भेद हैं, अद्यतन, अनद्यतन और परोक्ष। काल की धारणा भाषा के विकास क्रम में बदलती रहती है। उदाहरण के रूप में संस्कृत की विकसित हिंदी को ही ले लें। हिंदी में भूतकाल के 6 भेद सर्वथा दूसरे आधारों पर। अंग्रेजी के प्रभाव स्वरूप एक नया भेद भी आ गया है जो ऐसे वाक्यों में देखा जाता है, ऐसा न जाने वह कब से करता रहा है। इस वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का व्याकरणिक दृष्टि से अभी नामकरण नहीं हुआ। जिस प्रकार की असंगतियाँ अन्य कोटियों में दिखाई पड़ती हैं वैसी असंगतियाँ काल में भी हैं। सामान्यतः बीते हुए समय के लिए भूतकाल का, बीतते हुए समय के लिए वर्तमान काल और आने वाले के लिए भविष्यकाल का प्रयोग होना चाहिए, किंतु उसके प्रतिकूल भी काल प्रयोग पाए जाते हैं। जैसे वह प्रत्येक रविवार को वहाँ जाता है, इस वाक्य का संबंध भूतकाल से ही भी है, वर्तमान से भी और भविष्यकाल से भी। प्रत्येक रविवार को वह पहले भी जाता था, आज भी जाता है और भविष्य में भी जाएगा, ऐसी संभावना है। वस्तुतः यहाँ जाता है क्रियाकाल निरपेक्ष। ऐसे ही भविष्य के लिए अनेक बार भूतकाल का प्रयोग देखने में आता है। उदाहरणार्थ वह आया तो यह काम होने से रहा। यहाँ दोनों क्रियाएं भूतकाल में हैं किंतु उनका प्रयोग भविष्य के लिए हुआ है। या यह वाक्य लीजिए, आप आगे चलिए, मैं अभी आया। यहाँ भी भूतकाल का प्रयोग भविष्य के लिए किया गया है। भविष्य के लिए वर्तमान काल का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कल सुबह दिल्ली जा रहा हूँ वस्तुतः तात्कालिक वर्तमान काल का रूप है, किंतु उसका प्रयोग यहाँ भविष्य के लिए हुआ। इस प्रकार व्याकरण संबंधी नियंत्रण को भाषा का प्रवाह सदा स्वीकार नहीं करता। तात्पर्य कि काल संबंधी कोटियाँ भी अन्य कोटियों के समान निरपदवाद और असंगतिहीन नहीं है। जैसी असंगतियाँ लिंग, वचन या वाच्य आदि में दिखाई पड़ती हैं वैसे ही काल में भी। संस्कृत के क्रिया के अनेक स्वतंत्र रूप होते हैं, जैसे विषार्थक पापठते वह बहुत बार या बार बार पढ़ता है, इच्छार्थक पिपठिष्यति वह पढ़ना चाहता है, प्रेरणार्थक पाठयति वह पढ़ता है या पढ़वाता है। हिंदी में केवल प्रेरणार्थक रह गया है और वृषार्थक इच्छार्थक आदि के लिए स्वतंत्र शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे वृषार्थक के लिए क्रिया के साथ बहुत अधिक लगा दिया जाता है और इच्छार्थक के लिए चाहना धातु के रूप में काम में लाए जाते हैं। ऊपर चर्चित कोटियों में कारक का संबंध केवल संज्ञा और सर्वनाम से, वचन और लिंग का संज्ञा और क्रिया दोनों से तथा पुरुष काल वाच्य प्रकार आदि का क्रिया से। पुरुष का प्रयोग क्रिया के अतिरिक्त सर्वनाम के साथ भी होता है। रूप परिवर्तन, ध्वनि परिवर्तन के कारणों और दिशाओं की चर्चा पहले हो चुकी है। पद संबंधी रूप परिवर्तन के प्रसंग में भी न्यूनाधिक रूप में वे धात्यव्य है। पद संबंधी परिवर्तन के प्रमुख कारण है, पहला सरलता का आग्रह। जिस सरलता और सौकर्य की मांग के फलस्वरूप ध्वनियों में परिवर्तन होता है, इसी के फलस्वरूप पदों के रूप में भी। हरि, करिण, मुनि और साधु की तृतीया विभक्त एक वचन में हरिणा, करिणा, मुनिना और साधुना में सर्वत्र ना यानी अणा का प्रयोग उस सरलता का आग्रह का ही परिणाम है। सामान्यतः प्रतिपदिक यानी शब्द की ध्वनि अंतिम ध्वनि में भेद के कारण हरि ह्रस्व इकारांत और करिण नांत, मुनि ह्रस्व इकारांत और साधु ह्रस्व उकारांत, इनके रूपों में भी भेद होना चाहिए था, लेकिन सरलता के आग्रह ने इन्हें एक रूप कर दिया है। दूसरा, नवीनता का आग्रह। मनुष्य एक ओर यदि परंपरा प्रेमी है तो दूसरी ओर नवीनता का आग्रही भी। सदा परंपरा से लिपटे रहना उसे स्वीकार नहीं होता। यदि नवीनता का आग्रह न हो तो भाषा में ही क्या किसी धातु में परिवर्तन नहीं हो सकेगा। उसी नवीनता के आग्रह के फलस्वरूप भाषा में नए पदों की रचना होती है। आधुनिक हिंदी कविता या आलोचना के पाठक ऐसे अजीब गरीब पदों से परिचित नहीं है। नवीनता अवांछनीय नहीं है, किंतु भाषा की प्रकृति की परख न रखने वाले जब नवीनता दिखाना चाहते हैं तो प्रायः ऐसे पदों की सृष्टि कर देते हैं जो भाषा विज्ञान के नियमों की ही अपेक्षा नहीं करते बल्कि अनर्थक भी बन जाते हैं। यदि समाज वैसे शब्दों पर भी स्वीकृति की मुहर लगा देता है तो अनर्थकता भी सार्थकता के परिणत हो जाती है और भाषा विज्ञान नए नियम बनाकर उन्हें मान्यता प्रदान कर देता है। तीसरा, बल। बल देने की भावना से जिस प्रकार ध्वनियों में परिवर्तन होता है उसी प्रकार पदों में भी। उदाहरण खालिस के बदले निखालिस का प्रयोग बल देने के भावना का परिणाम है। श्रेष्ठ शब्द को हल्का पाकर श्रेष्ठतम या सर्वश्रेष्ठ शब्द का प्रयोग होने लगा। यद्यपि श्रेष्ठ में हितम का अर्थ भी था, श्रेष्ठतम कहना सुंदरतम कहने जैसा है। इसे अंग्रेजी में डबल सुपरलेटिव कहते हैं, जैसे मोस्ट ब्यूटिफुलेस्ट। स्वादिष्ट यद्यपि श्रेष्ठ के समान अतिशय वाचक था पर अब वह केवल स्वादु का वाचक हो गया, इसलिए बहुत स्वादिष्ट कहकर अभिप्राय व्यक्त किया जाता है। चौथा, अज्ञता। अज्ञता के कारण पद संबंधी अनेक परिवर्तन होते हैं। बहुत लोग उकारंत और उपरोक्त जैसे शब्दों को शुद्ध तत्सम मानते हैं। अच्छे विद्वान भी सापेक्षिक शब्दों का प्रयोग करते हैं जो दर्शन में के जैसा भ्रांत है। या तो सापेक्ष कहना चाहिए या अपेक्षिक। इसी प्रकार अभिज्ञ के बदले भिज्ञ, सृष्टा के बदले सृष्टा आदि के प्रयोग भी अज्ञान प्रसूत ही है। पांचवा, सादृश्य। ध्वनि परिवर्तन के प्रसंग में सादृश्य पर विचार किया जा चुका है। सादृश्य का प्रभाव शब्दों पर भी पड़ता है। तीनों के सादृश्य पर दोनों बन गया जो सामान्य नियम के आख्या व्याख्या है। तीन में न था तो तीनों में तो तीनों बना, पर दो में तो न नहीं है। श्वास का तद्भव रूप सांस स्त्रीलिंग में प्रयोग होता है और श्वास पुलिंग में। संभवतः आस आशा का तद्भव के प्रभाव कारण ऐसा हुआ। जब तक सांस तब तक आस। हिंदी में बहुत सारे तत्सम पुलिंग शब्दों आत्मा आय आयु गंध जय सामर्थ्य पुस्तक शपथ शरण वस्तु कुशल आदि का प्रयोग अरबी फारसी के रूह आमद उम्र बू फतह ताखस किताब कसम पना चीज खैरियत आदि के प्रभाव के कारण स्त्रीलिंग में होता है। ध्वनि के समान शब्दों का भी आगम लोप विपर्य आदि हो सकता है। शब्दागम तीन प्रकार से होता है। क, कभी कभी निरर्थक ध्वनि लगाकर शब्दों को दोहरा दिया जाता है, जैसे खाना वाना लड़का फड़का बाल्टी वाल्टी। ख, कभी कभी उसी अर्थ के वाचक शब्द को दोहराया जाता है, जैसे जगह जमीन नौकर चाकर रीति रिवाज खान पान देश वेशभूषा पहनावा ओढ़ावा कागज पत्र आदि। आजकल सब साफ सफाई शब्द का प्रयोग बहुत प्रचलित हो गया है। साफ विशेषण है और सफाई उसी से निष्पन्न संज्ञा, अतः दोनों का एक साथ प्रयोग कोई अर्थ नहीं रखता। यह तो सुंदर सुंदरता या सुंदर सौंदर्य कहने जैसा हुआ, पर जिस गति से यह प्रयोग बढ़ रहा है उसमें कुछ अर्थों के बाद व्याकरण से भी इसे मान्यता मिल जाए तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ग, राजनीतिक सांस्कृतिक प्रभाव के कारण एक भाषा दूसरी भाषा के शब्द आ जाते हैं, जैसे खलम दवाद स्याही रोशनाई लिफाफा कागज जिल्द आदि शब्द मुसलमानी शासन के दिन है। ऐसे ही अंग्रेजी के भी बहुत सारे शब्द हिंदी में आए हैं। शब्द लोप एक प्रकार से प्रयत्न लाघव का परिणाम है। जिस तरह ध्वनि परिवर्तन में प्रयत्न लाघव का हाथ रहता है उसी प्रकार शब्द परिवर्तन में भी। बड़े नामों के एक अंश का प्रयोग उसी के कारण होता है, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के बदले केवल शाकुंतलम पृथ्वीराज रासो के बदले केवल लासो आदि का प्रयोग। शब्दलोक का एक दूसरा रूप भी दिखाई पड़ता है जिसमें किसी भाषा के अंतर्गत पहले से प्रचलित कोई शब्द सर्वथा लुप्त हो गया है और उसके बदले दूसरी भाषा का शब्द काम में आने लगता है। उदाहरणार्थ गिलास शब्द लीजिए। गिलास अंग्रेजी का शब्द है। अंग्रेजों के आने से पहले गिलास के अर्थ का वाचक कोई शब्द रहा होगा पर उसे लोग सर्वथा भूल गए और आज शिक्षित अशिक्षित सबके मुँह से गिलास ही सुनाई पड़ता है। इसी तरह दुकान पर जाकर कोई पत्र मांगे तो उसे मनोवांछित वस्तु मिलेगी। इसमें संदेह है, किंतु कागज कहने पर दुकानदार को कोई संदेह नहीं होगा।